बीवी के हकूक बहुत सारे हैं। फर्स्ट थिंग, शौहर को अपनी बीवी के साथ उम्दा तरीके से रहना चाहिए। आशीरू हुन्न बिल मारूफ, सूरत निसा आयत 19 और बुखारी 3331 और मुस्लिम 3650। यानी बीवी को अच्छे रंग में रखे। आशीरू हुन्न में इब्ने अब्बास थे, तो वो जब रात को सोने का इरादा करते, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते, खुशबू लगाते, फिर उसके बाद कहते, जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे लिए एहतमाम करे, मेरे लिए तैयार हो, उसका भी ये दिल चाहता है, तो मैं उसके लिए तैयार हुआ। और फिर ये आयत पढ़ा करते थे, आशीरू हुन्ना बिल मारूफ, बीवी के साथ अच्छा मामला रखना चाहिए, उसको खुश रखें। और याद रखिए कि एक मर्द की बहुत बड़ी दौलत बीवी है। जैसे शुरू में जिक्र किया कि एक ख्वाहिश ऐसी है जो कोई और उसकी पूरी नहीं कर सकता, और वो ख्वाहिश मर्दों पे गालिब होती है। और अगर गालिब है और अगर बीवी ना हो तो क्या हो। मुझे एक कॉल याद आ रहा है हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का, बहुत ही खूबसूरत, ज़ुबानी बता रही हूँ लेकिन उसका ख़ुलासा क्या था कि जब तुम्हें अपनी बीवी पे गुस्सा आए, आ सकता है, बीवी कोई गलत काम करे, नाफरमानी करे, आपकी उम्मीद पे पूरी ना उतरे, तो फिर तुम चंद बातें सोचो। धोबन कौन है? कपड़े कौन धोती है तुम्हारे? तुम्हारी बाबरचन कौन है? तुम्हारे बच्चों की आया कौन है? और तुम्हारे दूसरे काम सारों का कौन करती है? जब तुम्हें अपनी इतनी ज़रूरतें एक औरत से पूरी होती मिलेंगी ना, तो तुम्हारा उस पर गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। बिलीव मी, कुरान में आता है, वन तक रहू शयन फहुआ खैरुल लकुम, वसान तक रहू शयन फहुआ खैरुल लकुम। तुम्हें कोई चीज़ बुरी लगती है, हो सकता है उसमें अच्छा ही हो। आपने फरमाया जब किसी को अपनी बीवी में कोई खूबी ना लगे तो कोई उसकी अच्छी बात देख ले, कुछ तो होगा ना। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। आपने फरमाया कि एक मर्द की बेहतरीन मता उसकी नेक बीवी है। सही मुस्लिम 3649 और बुखारी 1974। यानी सबसे बड़ी दौलत एक मर्द की वो बीवी है जो दीन में उसकी मुआविन होती है, बहुत अच्छी है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने बीवी के बहुत सारे हकूक रखे। अल्लाह के नबी आपके लिए, मेरे लिए, सब के लिए रोल मॉडल हैं, नमूना हैं। बुखारी 4750। अल्लाह के नबी सल्लम अपनी सारी अजवाज के घर में जाते, उनके पास बैठते, उनके हालात मालूम करते थे, फिर जिधर रात गुजारनी होती उधर आखिर में जाते। अबू दाऊद 2135। फिर आप अपनी बीवियों के साथ नरम लहजों में बात करते, कोई बात ऐसी होती नागवार गुजरने वाली बातों की वजह से, बिल्कुल उस चीज़ को पीछे डाल देते और मुस्कुराते हुए आते थे। तो दूसरा जो बीवी का एक बड़ा हक है मर्द पे, वो क्या है? तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तहफ़्फ़ुज़। अर रिजालु क़वामून अलन निसा, मर्द क़वाम है अपनी औरतों में। उसकी वजह क्या है? कि वो अपने माल खर्च करते हैं, सूरत निसा 34, अबू दाऊद 2143। लेकिन याद रखिए कि बीवी को अपने मर्द की हैसियत या उसके पास जितना माल है उससे ज़्यादा बढ़कर खाने पीने और कपड़े लत्ते का मुतालबा नहीं करना चाहिए। तीसरा हक जो एक बीवी का है अपने मर्द से, वो क्या है? कि शौहर बीवी को मुनासिब वक्त दे। बाज़ लोग माल दौलत दे देते हैं, वक्त नहीं देते। बुखारी की रिवायत 1968। फिर इसी तर्ह से शौहर का ये फ़र्ज़ है, बीवी का ये हक है कि बीवी के लिए तफरीह के मौके फ़राहम करे, यानी घूमना फिरना या कोई उसकी एंटरटेनमेंट का एहतमाम करना, ये भी शौहर का फ़र्ज़ बनता है। अबू दाऊद 2578। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी आयशा को, एक खेल होता था उस दौर में, हबशी लोग तलवारों से लड़ते थे, वो दिखा रहे हैं। कह लीजिए कि बीवी की जो एक रिफ़्रेशमेंट का के लिए एक जायज़ हद में रहकर काम करना। फिर अगली क्या है कि अगर दो या उससे ज़ायद बीवियाँ हों तो इंसाफ करें, और ये अदल रात गुजारने में भी होगा, खाने पीने पहनने ओढ़ने रहने सहने में भी होगा। हाँ, दिल की मोहब्बत एक अलग चीज़ है। सूरत निसा को अगर आप नोट कर लें तो उसमें ये चीज़ आपको आयत 3 में भी मिलती है, 129 में भी मिलती है। फिर अगला हक बीवी का क्या, कि शौहर बदतमीज़ी ना करे, बदकलामी ना करे, अबू दाऊद 2142। फिर नेक्स्ट क्या है कि शौहर को बीवी से हुस्न सलूक करना चाहिए, बुखारी 3331 और मुस्लिम 3644। बीवी को मारना नहीं चाहिए, बुखारी 5204 और निसा 34। अल्लाह के नबी के घर से गवाही मौजूद है कि आपने कभी अपनी किसी बीवी पे हाथ नहीं उठाया। फिर अगली बात, बीवी पे खर्च करें, यानी सिर्फ बीवी पे भी खर्च करें, तलाक 7 और बुखारी 4006। फिर बीवी का मेहर अदा करे। सूरत निसा 4 और अबू दाऊद 21062। फिर बीवी को घर की जीनत बनाए, यानी बीवी की इज्जत का भी ख्याल रखे, यानी बीवी को मतलब इज्जत दे कह लीजिए, सूरत अहज़ाब 33। फिर अगला हक जो आप अपने शोहरों को जाकर आज सुनाइएगा, अगर वो कभी किसी वक्त एतराज़ करें किसी को, मुझे तो नहीं लगता करें, लेकिन औरतें समझती हैं कि मर्द हमारे पढ़ने पढ़ाने पे एतराज़ करते हैं, तो याद रखिए बीवी को दीन की तालीम देना या दिलवाना ये मर्द का फ़र्ज़ है, क्योंकि मर्द एक किस्म का कवाम हो गया ना उसके लिए। सूरह तहरीम आयत 6 है, अमल साले करने हैं तो उसके लिए इल्म और मार्फत की तो ज़रूरत होगी। फिर इसी तरह शौहर का ये फ़र्ज़ है और बीवी का हक है कि मर्द अपनी बीवी को इस्लामी तालीमात का पाबंद करे, उसको इस्लाम पे अमल करने में असिस्ट करे। इंसिस्ट नहीं भी कर सकता तो असिस्ट तो कर सकता है ना, मजबूर नहीं कर सकता तो मदद तो कर सकता है। बीवी के अखलाक, उसके अमल, उसके अदाब की निगहदाश्त करना मर्द की जिम्मेदारी है। बीवी नमाज नहीं पढ़ती, शौहर से पूछा जाएगा। बीवी अपनी इस्मत की हिफाजत नहीं करती, पर्दे का एहतमाम नहीं करती, मर्द से पूछा जाएगा, क्योंकि मर्द बहरहाल अपनी बात मनवा सकते हैं। और ये जो चीज़ है कि बीवी को गुनाहगारी की ज़िंदगी गुजारने के लिए आज़ादी दे देना, इसको दयूसियत कहा गया। आपने फरमाया तीन लोग जन्नत की खुशबू ना पाएंगे, हालांकि बहुत दूर से आ रही होगी, तो उसमें एक वो शख्स है कि जो अपनी बीवी में ख़राबी देखे और खामोश रहे। मस अज़ीज़ मिस्र का किरदार कुरान में मौजूद है, उसको ही समझ लीजिए सिम्बॉलिकली। ये सूरत निसा 34 और बुखारी 893 से आपको मिलेगा। फिर अगला बीवी का हक है कि शौहर को बीवी के राज जाहिर नहीं करने चाहिए। बीवी का कोई ऐब है, कोई राज है, शौहर बीवी के ताल्लुक़ की कोई ऐसी बात जो कि किसी के सामने नहीं खुलनी, क्योंकि देखिए ये इंतहाई नापसंदीदा बात है। हदीस में नाम लेकर कहा गया कि कोई अपने शौहर का और शौहर अपनी बीवी का राज ना दे। इसी तरह बीवी को अपनी किसी दोस्त की हुसन का तذکرہ या उसकी तारीफ़ें इस तरह से अपने शौहर के सामने नहीं करनी चाहिए कि शौहर के दिल में उस औरत को देखने की इश्तिहा बढ़ जाए, ख्वाहिश बढ़ जाए। और ये सही मुस्लिम 3542 है। अब आप देखिए 14 बातें बताई हैं, इसमें 14 में आप 10 और ख़ुद भी ऐड कर सकते हैं। असल बात सारी ये है, ये सारी बात हकूक़ की नहीं है, इसमें आपका आपस में ताल्लुक़ कितना है। मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा दोनों में कॉमन लगती है वो शुक्रगुजारी है। इस रिश्ते की खूबसूरत बुनियाद शुक्रगुजारी पे होगी ना तो मर्द सोचेगा। अमूमन हमारे कल्चर में 22-23 साल के बाद ही शादी होती है लड़कों की, 25 साल स्टैंडर्ड कर लीजिए, 25 साल में इस औरत के बग़ैर रहा, बालिग तो वो हो गया 12-14 साल में, इतने साल एक औरत के बग़ैर रहा, फिर नफ्स पे काबू पाया, रोज़े रखने पड़े और भी कई पाबंदियाँ लगानी पड़ी खुद पे, अल्लाह ने एक औरत दी, हलाल दी। कंपेनियनशिप कितनी बड़ी चीज़ है ना। आप देखिए कि ये वो रिश्ता होता है अमूमन शुरू में भी तन्हा, बच्चे नहीं हैं, और अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं तो भी अकेले, और अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो लोग बहाना ढूंढते हैं कि किसी वक्त हम तन्हा हों, खुश होते हैं, बच्चे होने लग जाते हैं, और एक वक्त आता है बच्चे चले जाते हैं अपने अपने घरों में, शुरू में तन्हा और बुढ़ापे में तन्हा। तो ये दुआ कीजिए कि अगर ये रिश्ते हैं एक दूसरे की इस्लाह करें, कमी बेशी है, अब आइडियल सिचुएशन नहीं है, आप दीन में आगे जा रहे हैं, मर्द पीछे हैं, पीछे छोड़ देंगे या उसी पर खड़े रखेंगे, नहीं, आपका मेरा फ़र्ज़ बनता है हर अच्छी बात में अपने शौहरों को शामिल करें। शौहर अच्छी बात सुनकर आते हैं, वो अपनी बीवियों को शामिल करें। आप इस्लाह ला ही नहीं सकते, अगर आपने कोई चीज़ सुनी, पढ़ी, देखी, समझी तो दिल बदला। शोहरों का भी दिल आपकी बातों से नहीं बदलेगा, आपके कहने से नहीं बदलेगा, वो भी वही बातें सुनेंगे तो दिल बदलेगा। उनको भी कुरान से जोड़िए, मुतालबे कम कीजिए, कम खाइए, फजूल खर्ची कम कीजिए, खाना ज़ाया ना करें, कम पकाएं, थोड़ा ले लें, लेकिन अपने मर्दों पर ये बात लाजिम करें कम अज़ कम एक घंटा। अगर मेरे पास मस्जिदों की कंस्टडी हो ना, मिसाल है सारे शहर की, तो मैं कम से कम शहर में हर मस्जिद में डेली शाम को एक घंटे में शुरू से कुरान की तालीम लाजिम, मतलब आरसीएम साथ में ना, आरसीएम में मगरिब से इशा के बीच में आज रात से सूरत अल फातिहा शुरू हो रही है। हल्की फुल्की बातें, अमल की बातें, डे टू डे। कल सूरत अल बकरा का पहला रुकू, परसों तीसरा, यानी मर्दों को हमने ये जो आज़ाद छोड़ दिया है ना, कमाएं जी आप, आपका काम ही कमाना है, तो फिर अबू हुरैरा बेचारा क्या करते? और उमर ने तो बारियां लगाई हुई थी, एक दिन वो और एक दिन उनका हमसाया, बारी लेते। हर मस्जिद जहां आपकी अप्रोच है, बिलीव मी, जहां आप पहुंच सकते हैं, आप किसी एडमिन्स में हैं, मस्जिद की शूरा हैं, आप बोर्ड हैं, वहां ये पैगाम दीजिए कि खुदा के लिए कुरान को आम करें, बहसों को छोड़े, झगड़ों को छोड़े, मुबहसों को छोड़े, कॉन्ट्राडिक्शन को छोड़ दे। अभी फिलहाल हदीस को एक साइड का टॉपिक बना लीजिए, आप सूरत फातिहा से कुरान तो शुरू करें, और आप देखें कि पूरे कुरान में एक छोटा सा बुकलेट भी नहीं बनता इबादत के नाम पे, जिसको आप फिक कह लेंगे, ये तो आपको इस कोर्स से भी अंदाज़ा हो गया। सारा दीन अल्लाह से जुड़ने, अल्लाह का खौफ, तकवा, मोहब्बत का, अगर आज एक मस्जिद में ये शुरू होगा ना, तो 526 शायद गालिबन कमो बेश कम कर लीजिए, इतने दिन में कुरान पूरा हो जाएगा। अगर डेली वो मस्जिद वाले ऑफर कर रहे हैं ना, तो विद इन 2 ईयर्स RCM में एक पूरा कुरान तफसीर या तर्जमे के साथ पूरा हो जाएगा। और अगर मगरिब पे मिसाल है कि 50 लोग आते हैं, 10 भी बैठ गए ना, 40 चले भी गए, बिलीव मी, फिर भी इट्स ओके। लेकिन ये जो हमने इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाकर सिर्फ नमाजों के लिए खोली, और वो भी खाली, मस्जिद आबाद ही तब होंगी जब मस्जिदों में आने वालों को दीन मिलेगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें सबको एक दूसरे के साथ सिंसियर बनाए, मुखलिस बनाए। देखिए इनका सवाल है कि बच्चों की तालीम बाप का फ़र्ज़ है, तो फिर माएँ जो बच्चों को स्कूलों में छोड़ती ले जाती हैं, इसका क्या हुक्म है? पहली बात है कि बच्चे की तरबियत माँ का फ़र्ज़ है, पहली बात। माँ खुद पढ़ी लिखी होगी तो उसको कहीं नहीं ले जाना पड़ेगा। आज क्या है, नाजरा पढ़ाने के लिए आधा घंटा दूर से माँ चलती है, 15 मिनट में वो सबक मिल जाता है, और फिर आधा घंटा ले जाकर जाती है। ये एक ज्यादती है। हर औरत को शादी से पहले कम से कम इतना तो कुरान समझ जाना चाहिए कि वो अपने बच्चे को नाजरा तो पढ़ा सके। अगर औरतें खुद पढ़ी लिखी हैं, देखिए जो माएँ खुद पढ़ लिख जाती है ना, उनका ये सारा काम ख़त्म हो जाता है, घरों में पढ़ता है। बाकी रहेगी जो, अगर आपकी मिसाल है बच्चों को स्कूलों में लेके जाना, आप अगर किसी के हस्बैंड जॉब करते हैं या काम करते हैं, और अगर यहाँ का जो सेटअप चल रहा है उसमें, तो यू हैव टू डू इट। असल अगर आप आइडियल सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी का एक स्केलेटन देखें, तो वो ये नहीं है जो आज हमारा है। 18 साल तक एक बच्चा पहले स्कूल में, फिर उसके कॉलेज में, और इधर उधर जाता है, फिर कहीं जाके कोई एक स्पेशलाइजेशन चूज़ करके आगे जाता है, ये तरीका नहीं था। इमाम बुखारी ने 18 साल की उम्र में अपने शहर के सारे उस्तादों से पढ़ लिया था और किताब भी लिख ली थी। तो ये एक आइडियल सोसाइटी, बहरहाल तआवुन अल बिर्रि व तक्वा, जो काम अच्छी नीयत से करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह उसमें अजर देगा। ठीक है, चलिए आगे है औलाद के हकूक। औलाद का लफ्ज़ वलद से है, वलद बच्चे को कहते हैं, औलाद उसकी जमा है, वालिद बच्चा पैदा करने वाला यानी बाप, और वालिदा औरत, और दोनों को जमा करें तो वालिदैन। असल में तो वो लफ्ज़ बनता है दो वालिद, लेकिन मुराद उससे माँ और बाप है। तो जिस तरह से माँ बाप के हकूक़ हमने शुरू में पढ़ लिए, तो यहाँ अब औलाद के भी हकूक़ हैं। अगर इसमें मैं वो वाकई सुना दूँ पहले, तो बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी। हज़रत उमर के पास एक शख्स आता है अपने जवान बच्चे को लेके, और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरा ये बच्चा नाफरमान है, मेरी बात नहीं सुनता, तो आप इसको समझाइए। तो इससे पहले कि उमर कुछ कहते, उस बच्चे ने बाप के सामने अमीरुल मोमिनीन से कहा कि आप मुझे जो भी कहेंगे मैं आपकी बात सुनने और मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि बच्चा या औलाद होने के नाते मेरा क्या हक है इस बाप पे, डू आई हैव एनी राइट्स? तो हज़रत उमर ने कहा कि तेरे तीन हक थे तेरे बाप के ज़िम्मे। नंबर एक, तुझे अच्छी माँ देता। मुझे भी अंदाज़ा था अब तरबियत ही कहेंगे, तरबियत बाद की बात है। पहला हक क्या है कि तुझे एक अच्छी माँ देता, और दूसरा क्या कि तेरा अच्छा नाम रखता, और तीसरा यह है कि तेरी अच्छी तरबियत करता। उस बच्चे ने कहा कि फिर मैं आपको बता दूं कि मेरे बाप ने मेरे ये तीनों हक नहीं दिए। इसने एक मजूसी औरत यानी फायर वर्शिपर से शादी की, मेरा नाम ज्वाला रखा, जाला जैसे घरों में जाले लगते हैं, अरबों में आदत थी जानवरों के नामों पे नाम रखने की, बेकार नाम होते थे कभी, असद नाम जैसे शेर है उसका मानी। और तीसरी बात है, चूंकि मेरी माँ गैर मुस्लिम थी, मुशरिका थी, तो उसने मेरी परवरिश वैसे की। तो हज़रत उमर ने कहा कि ऐ शख्स, इसको ले जा, कसूर इसका नहीं तेरा है। तो औलाद के हकूक पे बात सुनने से पहले हम सबको भी देखना है कि कहीं हमने अपनी औलादों को अच्छे बाप या अच्छी माएँ देने से महरूम तो नहीं रखा हुआ। आज भी जब रिश्ते होते हैं, चले आप ढूंढ रहे हैं अपने बेटे के लिए लड़की, या आप ढूंढ रही हैं अपनी बेटी के लिए लड़का, या अगर आज के फी जमाना दौर में लड़का खुद ही लड़की या लड़की खुद लड़का ढूंढे, क्या उस वक़्त ये सोच होती है कि ये शख्स आने वाले बच्चों का बाप या ये औरत आने वाले बच्चों की माँ होगी? ये सोच के रिश्ते ढूंढिए, फिर बहुत सारे चीज़ें बदल जाएंगी। तो बाकी रहेगी औलाद, अल्लाह की नेमत है, उसका इनाम है, दुनिया की जीनत है। सूरत कहफ 46, अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया। नेक औलाद के लिए अम्बिया कराम ने भी दुआएं की थी, जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ सूरत आले इमरान 38 और सूरत मरियम आयत 5 और 6 में। फिर इसी तरह पैगंबरों की तरह साले औलाद की हमें भी दुआ करनी चाहिए। हज़रत इब्राहिम की दुआ सूरत अलअक़ाफ़ 15 में है। हज़रत इब्राहिम ने अपने लिए मांगी थी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। फिर इसी तरह से आप देखिए कि औलाद के हकूक में बहुत सारे जो हकूक हैं आपके मेरे सामने, उसमें से पहला क्या है कि औलाद को अच्छी माँ दी जाए और अच्छा बाप दिया जाए, जिस पे बात कर दी आपके सामने। फिर दूसरा हक क्या है कि शौहर बीवी जब आपस में किसी ताल्लुक़ का इरादा करें तो एक दुआ पढ़ी जाए। आप सबको आनी चाहिए, आती ज़रूर होगी, दोहरा लीजिए, बिस्मिल्लाही अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। अल्लाह के नाम के साथ, या अल्लाह बचा हमको शैतान से और दूर रख शैतान को उस औलाद से जो तू हमें इनायत करेगा। ये सही बुखारी 141 और मुस्लिम 3533 के अल्फाज हैं। तो ये दुआ लाजिम है। आज हम नस्लों के बिगाड़ की बात तो करते हैं, लेकिन कितनों को ये दुआएं आती हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि औलाद के हकूक में से एक हक क्या है कि उनके पैदा होने से पहले ही, इवन और इवन शादी से पहले भी दुआएं शुरू कर दें। जैसे अभी आपको रेफरेंस दिया, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, नेक औलाद की दुआएं करना। फिर इसी तरह से उनकी फिक्र लग जाए आपको। हम तो तब दुआएं करते हैं ना जब औलाद बिगड़ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कि अगला हक क्या है कि जब बच्चा पैदा हो जाए, यानी तरतीब के साथ ही अगर हम देख रहे हैं, जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसका अच्छा नाम रखा जाए। इब्ने माजा 3165 और अबू दाऊद 2837 है। पैदाइश के दिन या 7वें दिन के अंदर अंदर नाम रख लेना चाहिए। सही बुखारी 1303 और मुस्लिम 6025। फिर उसके बाद औलाद का अकीका करना चाहिए। देखिए बच्चों के जो कुछ हकूक है ना, बलूगत से पहले या आप कह लें कि दूध की मुद्दत के अंदर के, तो मैं तरतीब से कोशिश कर रही हूँ बात करूँ कि बच्चों का अकीका किया जाए। सही बुखारी की रिवायत 5471। फिर इसी तरह बच्चे को दूध पिलाया जाए, रिजात की जाए, इसके अखराजात पूरे किए जाएँ। सूरत बकरा 233। वल वालिदातु युर्दिना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन और सही मुस्लिम 2311। फिर इसी तरह से अगला क्या है कि औलाद की अच्छी परवरिश की जाए, उनको बिगाड़ा ना जाए। फिर इसी तरह औलाद का एक हक है कि औलाद के कत्ल से बचे, एबॉर्शन, यानी बच्चा पेट में है तो उसको जीने का हक दीजिए। सही मुस्लिम 3564, क्योंकि ये कबीरा गुना है। सूरह बनी इसराइल आयत 31 में भी यही बात है। आज कत्ले औलाद के नाम पर जो डिफरेंट तरीके हैं, जिसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, नाम बदल दिया जाता है, लेकिन उसमें एबॉर्शन इंतहाई कबीरा गुना है और इससे बचना चाहिए। इसकी शिद्दत यहाँ से देख लीजिए कि नबी सल्लम जब किसी औरत से बैत लेते थे तो वहाँ अहद लेते थे कत्ले औलाद से बचोगी। सूरह मुमतहिना के आखिर में वो बैत के अल्फाज भी मौजूद हैं, वहाँ से भी डबल चेक कीजिए। फिर इसी तरह बच्चे पैदा हो गए, तरबियत शुरू हो गई, इसके बावजूद भी उनकी नेकियों के लिए दुआएं करते रहें। सिलसिलतु सहीहा 596, यानी वालदैन औलाद के लिए इनकी दुनिया की ज़िंदगी के लिए दुआएं करें, लेकिन जो इबादुर्रहमान है वो अपनी औलाद के लिए क्या दुआ करते हैं? रब्बना हबलना मिनज़्वाजीना वज़ुर्रियातिना कुर्रता युनिम वजालना लिलमुत्तकीना इमामा। सूरत फुरकान 74-75। और हज़रत इब्राहिम ने अपनी औलाद के लिए नमाज पर कायम रहने की क्या दुआ की थी? रब्बी जालनी मुकीम सलाती अमीन। जी शाबाश, सूरह इब्राहिम आयत 40। फिर इसी तर्ह से माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि औलाद की इस्लामी तौर तरीक़ों पर तरबियत करें, अल्लाह की पहचानने, उसकी मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करें, अल्लाह की इबादत के काबिल बनाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिखाएं, कुरान मजीद की तालीम दें, नेकी के कामों पे साथ ही लगा लें, उनकी अखलाकी, इज्तमाई और माशरती तरबियत करना वालदैन की ज़िम्मेदारी है। मसलन आप देखिए कि औलाद को तौहीद सिखानी चाहिए। बुखारी की रिवायत है 1395 और मुस्लिम 121। बच्चा बोलने की मुद्दत को होता था ना, तो अल्लाह के नबी सूरह फुरकान की आयतें पढ़वाते थे उससे, जिसमें अल्लाह ताला की बड़ाई की बात है। फिर अगला हक है कि 7 साल की उम्र में औलाद को तहारत और नमाज बिल्कुल क्लियर कट समझा देनी चाहिए ताकि वो नमाज का आदी बन जाए। अबू दाऊद 466। और औलाद को नमाजों के अलावा भी इबादत का आदी बनाना चाहिए, सही मुस्लिम 2669 और बुखारी 9751। यानी बच्चों से नफिल पढ़वाना, उनको रोज़े रखवाना, ये करना चाहिए। इसलिए कि आप देखिए कि जो आप करेंगे ना, बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा। ये भी एक हमारा आजकल का इशू है, कहते हैं करते नहीं। किसी ने कहा कि बच्चे नहीं सुनते, पर ये याद रखो कि वो बच्चे देखते हैं। माँ बाप जो भी करेंगे बच्चा उसको देखेगा, एक फितरी सी बात है। तो लिहाजा बच्चों को शुरू से ही मुख्तलिफ किस्म की इबादात का आदी कर देना चाहिए। फिर इसी तरह से अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, इसकी रगबत शुरू से दिलानी चाहिए। सूरह लुकमान में याद है हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को क्या कहा था? वामुर, नेकी का हुक्म दो। फिर नेकी के कामों की प्रैक्टिस करवाएं, हिरस दिलाएं। एक गेम बच्चे खेलते हैं, एक जगह साथियों ने तैयार की, मैंने देखा, नेकियां ढूंढो। वो छोटे छोटे अच्छे गुड डीड्स लिख कर ना छुपा देते हैं, कोई गमले के पीछे, कोई इधर उधर। फिर बच्चे ढूंढते हैं, जिसको वो पर्ची मिलती है लाकर, फिर वो काम उनसे कराया जाता है। तो ये गुड डीड्स को फाइंड आउट करना, ये बड़ी प्यारी गेम है। बच्चों के अंदर इस तरह की रग़बत होनी चाहिए। फिर इसी तरह औलाद के हाथ से सदका दिलवाइए, अपनी जेब से कुछ पैसे अलग करके वो खुद भी डालें, आपने भी जो देना होता है वो बच्चों से दिलवाएं। फिर इसी तरह बुज़ुर्गों की मदद करने का जज्बा अपने बच्चों में डालिए। इल्म की महफिलों में बच्चों को ले जाइए और वहाँ कुछ ना कुछ काम उनके असाइन कर दीजिए। मतलब बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको वो कलर करवाने लग जाएं। आपके बेबी सिटर आपके अपने ही बड़े बच्चे हो सकते हैं अगर हम उनमें ये शौक़ डाल दें। फिर इसके बाद औलाद का अगला हक क्या है कि आप औलाद को गैर मुस्लिमों की मुशाबहत से बचाइए, सही जामिया सगीर 1067। फिर औलाद को अच्छा अखलाक सिखाना और बुरे अखलाक की हकीकत समझाकर इससे रोकना चाहिए, सही मुस्लिम 6637। मसलन क्या, अब इसके सब पॉइंट्स लिख सकते हैं कि मसलन कैसे। नंबर एक, चोरी की हकीकत समझाइए फिर इससे रोकिए, हंसी मजाक में भी झूठ बोलने से रोकिए, अबू दाऊद 4999, यानी 3 दफ़ा 9। फिर बच्चों से वादा पूरा करवाना, अमानत और दयानत सिखाना, बुखारी 3-3। बदकलामी से रोकिए, तिरमिज़ी 1977। औलाद को लहवो लाएब की हकीकत समझाकर इन्हें फजूल कामों से रोकिए, सूरत मोमिनून आयत 3 में मोमिन का मिजाज क्या बताया गया? अनिल लगवी हम मोरिदून, एराज करते हैं। तो आज तो अपने बच्चों को खुद हम हाथों में कार्टून पकड़ा कर कहते हैं खेलो। आज की माँ ने बच्चे को काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया है, सॉरी टू से दैट। और जब से नेट फ़ोन में आ गए उस वक़्त से तो बात और ही बिगड़ गई। अल्लाह की पना, अपनी सहूलत के लिए काम करने, फ़ोन नहीं दूंगी तो काम नहीं करने देगा। पहले करती थी माएँ काम, पहले होते थे हाथों में फ़ोन, और जिस बच्चे के हाथ में आपने नेट दे दिया अब जो मर्ज़ी पाबंदियाँ लगा लें। यकीन करें छोटा 3 साल का बच्चा उंगली की मदद से जाकर यूट्यूब खोल लेता है। उनको वो तस्वीरें छोटे छोटे दिमागों में रची हुई हैं, उनको पढ़ना थोड़ी आता है। और एक बच्चे ने एक मौके पे मेरा फ़ोन पकड़ा, ऐसे ही हम बैठे हुए थे किसी ट्रिप में थे, तो उनका बच्चा बैठ गया आके। मैंने कहा देखो करता क्या। यकीन करें उसने मेरा फ़ोन खोला और उसमें से उसने यूट्यूब खोली और मुझे उस दिन उस बच्चे से एक दो चीज़ें समझ आई जो मुझे पहले नहीं आती थी, और उसने न जाने क्या लिखा, मैंने आज तक अपने फ़ोन पे कभी कार्टून नहीं खोले, बिलीव मी कि उसने पता नहीं क्या टच किया कि पूरे कार्टूनों की लिस्टें खुल गई और उसने अपनी पसंद का कार्टून लगा दिया। 3 साल का बच्चा, मैं उसका मुंह देख रही थी, ऐसे उंगली फेरते हैं बच्चे। तो आप अगर उसमें उनको अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो वो अच्छी सीखेंगे इंशाल्लाह। फिर इसी तरह औलाद को दूसरों के हकूक़ की अदायगी का भी दर्स दीजिए। पहले घरों में बुज़ुर्ग होते थे, बुज़ुर्गों की खिदमत बच्चों से कराई जाती थी, उनमें आजज़ी आती है। आप अपनी सास के साथ या आपके शौहर अपनी माँ की देखभाल कर रहे हैं, बच्चे देख रहे होते हैं, कल वो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो फिर दूसरों के हकूक़ कैसे होंगे। नंबर एक, ये इसके फिर मेन पॉइंट्स लिख लीजिए, नंबर एक सिला रहमी सिखाइए, बुखारी 6138। कभी बच्चों से कहिए कि नानी को मैसेज छोड़ें, खाला को छोड़ें, फुप्पो को छोड़ें, दादी को मैसेज छोड़ें, बात करें। बच्चों के दिलों में मोहब्बत डालिए रिश्तों की, काट के बच्चों को रखा तो ये हमसे भी कट जाएंगे। फिर दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि पड़ोसियों के हकूक़ सिखाइए, बच्चों के आज से कोई छोटी मोटी चीज़ दिलवाइए कि जो नेबर में देख कर आओ, बुखारी 6014। ज़रा बड़े होते बच्चों को कहिए चले आप नेबर के पत्ते झाड़ दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उनसे पड़ोसियों के काम करें। फिर बच्चों को बीमार की आदत सिखाइए, सही मुस्लिम 6551, यानी 6551। फिर बच्चों में मेहमान नवाजी का शौक़ पैदा कीजिए, बुखारी 6134। घर में मेहमान आते हैं, बच्चों से खिदमत कराया करें, वो दुआएं लेंगे, वो काम करेंगे, अच्छा लगेगा। फिर इसी तरह इसी में अगला पॉइंट क्या है कि बुरी मजलिसों से बचने और अच्छी मजालिस इख्तियार करने की तलकीन कीजिए, सही बुखारी 2101 और मुस्लिम 6692। फिर इसी तरह अगला पॉइंट क्या है कि औलाद की सेहत का ख्याल रखें। इसके सब पॉइंट क्या हैं, नंबर एक रोज़ गुसल दिलवाएं। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि गुसल लेने में यानी शावर में कितनी हेल्थ है। बास बच्चों से बू आती है, दूध की बसांत, पैम्पर की बसांत मिलजुल कर, ऊपर आप कोई लोशन ही क्यों ना लगा दें, एक सेकंड उस बच्चे को आप होल्ड नहीं कर सकते कि जिसके पास से ये रंग बिरंगी किस्म की बदबूएं किसी खुशबू के साथ मिलकर आ रही हों। बच्चे को रोज़ गुसल दिलाइए, और गुसल का बेस्ट टाइम फजर से पहले का, फितरी बात है, उस वक्त एक नया दिन शुरू होता है, उस वक्त उठकर जो गुसल कर लेता है वो सारा दिन फ्रेश रहता है। फिर दूसरा हक बच्चे की सेहत के मुतल्लिक क्या है कि बच्चे के नाखून और इसी तरह प्यूबर्टी के साथ ही उससे जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं उनको साफ़ करना सिखाइए, मुस्लिम 599 और अबू दाऊद 4200। फिर इसी में एक पॉइंट लिखिए, बच्चों की जिस्मानी वर्जिश की रग़बत दिलाएं, एक्सरसाइज करवाएं, खिला खिला के मोटा ही नहीं करना उनको, बैठे एक हाथ में चिप्स का पैकेट है दूसरे में कोक है और सारा दिन का ज़्यादा हिस्सा वो बैठे हैं, वज़न तो बढ़ेगा। आज देखिए कि यूथ में या इवन प्री यूथ जो है उसमें बच्चों का वज़न बहुत बढ़ जाता है, तो उसकी वजह अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। आज से शायद 100 125 साल पहले अल्लामा इकबाल रो गए कि रुलाती है मुझको जवानों की तन आसानी, जौरा पाए और देखा और रोए क्या कि मुझे जवानों का तन, तन मैंने बॉडी, आसानी मैंने आसान, यानी हल्के पानी भी नहीं पीते, पानी भी नहीं हजम होता। आज देखिए बूढ़ा बाप आज भी घास काट लेगा बाहर से, जवान बच्चा नहीं काटता। अब्बा जी वो पैदल 1 किलोमीटर दूर जाकर भी दूध ला देंगे, बच्चा गाड़ी के बगैर नहीं जाएगा। तो अपने बच्चों को और ख़ास तौर पे लड़कों को जिस्मानी तौर पे मजबूत बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, औलाद के हकूक़ में से औलाद को हलाल और हराम का फ़र्क बताइए, हलाल का पाबंद कीजिए, हराम से उनको रोकिए। फिर अगली बात, इस्लाम के अहकामात का पाबंद बनाइए, कैसे, बच्चियों को पर्दे की पाबंदी सूरत अल अहज़ाब 59, लड़कों को दाढ़ी रखने की रग़बत और ट्राउज़र को शलवार को इस्लामी असूलों के मुताबिक इस्तेमाल करना, सही जामे सगीर 3209। फिर इसी तरह से औलाद को अच्छी बात कहने की तरबियत दीजिए, गलत बात पे कभी ना हंसें, चाहे वो 1 महीने का बच्चा क्यों ना, एक माँ का तो बोलता भी नहीं ना, 1 साल का बच्चा गलत बात करे और अगर आप चुप कर गए और आगे से मुस्कुरा गए, आपने अपना हिस्सा डाल दिया, बुखारी 6136। फिर औलाद को बदकलामी से रोकिए, तिरमिजी 1610। औलाद को रहम दिली सिखाइए, सही तिरमिजी 1924। अब इसके अगला पॉइंट क्या है कि औलाद की अच्छी माशरती तरबियत, यानी मुख्तलिफ तरबियतें हैं ना, जिस्मानी तरबियत, अखलाकी तरबियत, मजहबी तरबियत, अब क्या है माशरती तरबियत। कैसे? नंबर एक, अफ्वा दरगुजर सिखाइए, सूरत बकरा 237। जब आपके मेरे लिए अफ है, दरगुजर है, तो बच्चों के लिए क्यों नहीं? और बच्चों को तो हर वक्त ही मुकदमे होते हैं, उसने ये मारा, तो बच्चों से कहिए कि आप माफ़ कर दें, दरगुजर जाने दो। और सबसे पहले किसको माफ़ करेंगे? घर में ही अपने भाई या बहन को। जब घर में माहौल अच्छा हो जाएगा तो माशरे में माहौल खुद बहुत अच्छा होगा। फिर उसके बाद बच्चों को नरमी से पेश आने का सबक दीजिए। कभी आप एक बच्चे को दूसरे के साथ या दोस्त के साथ थोड़ी सी हार्श लैंग्वेज या हार्श एटीट्यूड करता देखें तो समझाइए। सही मुस्लिम 6601। अगला नुक्ता क्या तरबियत का? बच्चे को गुस्से पे काबू पाने की तलकीन कीजिए, आल इमरान 134। ईसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करें, बुखारी 4889। और सूरत हशर में वाक्या जो मौजूद है, एक सहाबी ने जो अपने ऊपर एसार किया था दूसरे के लिए, उसको सुनाइए। यानी मीन के बच्चों को ऐसी बातें सुनाइए कि जिससे उनके अंदर भी इसी का रग़बा हो। फिर बच्चों को रास्ते में पड़ी हुई तकलीफ दे चीज़ों को हटाना सिखाइए, सही मुस्लिम 153। कोई शाख पड़ी हुई है, आप यहाँ से निकले, बच्चे को स्कूल से लिया, पत्थर है रास्ते में, पत्ता है, झाग है, बेटे इसको उठा के उठा दीजिए, बस कुछ कहिए नहीं, कहानी ना सुनाए। आप पहले शुरू में खुद उठाया करें, बच्चे भी देख कर सीख जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने की तलकीन कीजिए, मुस्लिम 177। कैसे? छोटी छोटी बातों पर। अपने ही साथियों में अगर कोई गलत चीज़ देखे तो उनको प्यार से समझाएं। फिर इसी तरह जवान होते हुए बच्चे, वही बात है कि टीन एज से पहले ही बच्चों को, लड़कों को ख़ास तौर पे औरतों की तरफ ताड़ ताड़ कर नज़रें रखने और गाड़ने से रोकिए। अपने बच्चे को कहिए बेटा नज़रें नीचे रखो, लोअर योर गेज़। 7, 8, 9 साल की उम्र में बच्चे का कद आपके बराबर ही होने लग जाता है, बेटा लोअर योर गेज़, नज़रें झुकाओ। बहन है घर में, नज़रें झुका के बैठो, माँ से बात करो नीचे बैठो। और ख़ास तौर पे फिर लड़कियाँ और लड़के तो नामहरम औरतों और मर्दों के साथ तन्हाई में मत बैठने दीजिए। अपनी बच्चियों को, इवन वो 2-3 साल की हैं, इवन चचा मामू फूफा, कोई करीबी रिश्तेदार, उसके साथ कभी तनहा ना छोड़ें, कभी उनकी गोदों में ना बिठाएं। बिलीव मी, इस पे तो मैंने एक पूरा लेक्चर हमने लिया था पेरिस में कि बच्चों को सेक्सुअली कैसे सिक्योर करें, पूरा एक आर्टिकल था, उसकी बेस पे बात की थी पिछले से पिछले, यानी 17 का जो दौरे कुरान था उसी के अराउंड के लेक्चर्स में वो कहीं होगा कि बच्चों की आज के दौर में ख़ास तौर पे, वल्लाह ही ये एक बिग इशू बन चुका है। जब बाहर भेड़िए हों और गंदगी हो तो फिर बच्चे कहाँ महफूज होंगे, पेडोफीडिया का नाम आपने भी सुना होगा, तो लिहाजा अपने बच्चों को रोकिए। फिर इसी तरह से बड़ों का अदब सिखाइए, तिरमिज़ी 1919। फिर इसी तरह से औलाद को अच्छे आदाब सिखाइए, अब ये अगला पॉइंट है। कैसे? नंबर एक, खाने के आदाब सिखाइए, बुखारी 5376। बच्चे इधर उधर खाने लग जाते हैं, बाएं हाथ से खाते हैं, पूरी प्लेट में हाथ मारते हैं, रोकिए इन सब से। फिर दूसरा, सोने जागने के आदाब सिखाइए, सही बुखारी 5018। फिर कज़ाए हाजत के आदाब सिखाइए, अबू दाऊद 5197। बाथरूम में कैसे बैठते हैं, वहाँ बोलना नहीं है, बातें नहीं करते, और जल्दी से फारिग होना है। फिर इसी तरह सलाम के आदाब सिखाइए बच्चों को, अबू दाऊद 5197। छींक और जमाई, यानी स्नीजिंग हो जाती है या यॉनिंग होती है, तो उसके मैनर सिखाइए, तिरमिज़ी 2746। फिर इसी तरह से औलाद के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आइए, बुखारी 5997। फिर औलाद को नमाज का हुक्म दीजिए, सूरत तौहात 132 और मरियम 55। औलाद के दरमियान अदल कीजिए, बहकी और तबरानी। औलाद को दीन सिखाना चाहिए, बुखारी 2586। और औलाद के लिए इस्तेआत के मुताबिक माल छोड़ जाइए, यानी कुछ हिस्सा अगर अपने माल का हम अपने बच्चों के लिए एज अ विरसा छोड़ जाते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, कल वो बच्चे दूसरों से तो नहीं मांगेंगे, बुखारी की रिवायत है 2742। और सबसे बढ़कर औलाद को इस्लामी तालीम दीजिए, दीनी तालीम व तरबियत के लिए इहतमाम करना माँ बाप का फ़र्ज़ है, क़ुरान की तालीम, हदीस की तालीम, सीरत की तालीम कौन देगा उनको, कौन दिलाएगा, जिन्होंने दुनियावी स्कूलों में भेजा। तो अपने बच्चों के इस हक़ को मत ज़ाया कीजिए, सही इब्ने माजा 22, 24 और 22. अब आप देखिए कितने हकूक अभी तक हुए हैं, 11, और उसके अंदर सब पॉइंट्स मिला लें तो कम से कम 50 हकूक की बात हुई है. तो आखिरी 12वां जो बड़ा हक कह लीजिए, जवान होते ही औलाद की शादी की फिक्र कीजिए, निकाह की, और बेटी है तो उसकी विलायत, और बेटा है तो उसके लिए अच्छी लड़की ढूंढने का एहतमाम कीजिए. तिर्मिज़ी 1101. याद रखिए कि औलाद आजमाइश है, अनफाल 28 और मुनाफिकून आयत 9. इसका इलाज क्या है कि वो फितना जो माल और औलाद में है, उसका इलाज क्या है कि आप इन चीज़ों को अच्छे तरह से रेस कीजिए. देखिए फितना कहते हैं उस चीज़ को, हो नेमत बट मिस यूज़ करें तो जहमत बन जाए. मसलन छुरी नेमत है ना, लेकिन अगर आप उधर से पकड़ लें जहाँ से काटना है तो आपका हाथ कटेगा. ये रहमत नहीं जहमत है. तो इनकी अच्छी तालीम और तरबियत करना कराना, ये सब कुछ इसके अंदर आता है. तो अब आप सोचिए कि हम क्या वाकई बच्चों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं? हमारे जहन में तो ये स्कूल चले जाएं, खा लें पी लें, सर्दी आई तो मोटी जैकेटें पहन लें, सारा दिन बेचारे खानों के साथ हमारी डांटे भी खाते हैं, और कुछ ने बिल्कुल ही अलग कर दिया. जी आप जी, जवान होती हुई बच्चियों को कैसे ट्रेन करें? देखिए माँ एक दोस्त भी होती है, वो बेस्ट मॉम है जो बेस्ट फ्रेंड भी हो. बच्चियों को जब घर में इस तरह की मदद नहीं मिलती तो फिर वो दोस्तों, सहेलियों, और पहले दौर में खालाओं फूफियों से ऐसी बातें शेयर करती थी. हर चीज़ वक्त आने पर उनको थोड़ा सा पहले से अच्छे अंदाज में बताई जा सकती है. और मैं जो चीज़ अक्सर रिकमेंड करती हूँ कि 10 साल की उम्र में बेटा या बेटी कुरान पढ़ाना शुरू कर दें, हल्की हल्की वजाहत से. 15 साल से पहले कुरान में सारे हुक्म मसले वो खुद ही पढ़ चुका होगा. इवन लड़कों को भी कुछ चीज़ें, जैसे आपको तय सूरह बकरा में सेकंड पारे के लास्ट रूप में कुछ ऐसे इश्यूज़ है जो सिर्फ औरतों से मुतल्लिक है. अब आप कहते हैं 10-11 साल के बच्चे को ये कैसे पढ़ाएं, गुजार दीजिए ऊपर से, क्यों खा ही करते हैं. आप देखिए कि वॉशरूम्स यूज़ करते हैं ना सब, टॉयलेट की बातों को कोई हवा बनाता है या उसको कोई मजाक या हंसी की बात है, दिस इज़ नीड. तो वक्त के साथ ये एक बेसिक प्रोसीजर चल रहा है, इट्स ओके. यानी बस उसको हल्की सी बात करके क्यूरियोसिटी ना डाल दें और आगे चले जाएं. हाँ बेटी आपकी पढ़ रही है आपसे कुरान, जब आप ऐसी आयतों पे आए तो अच्छे तरीके से बता दें, बेटा ये ऐसे होता है, हो तो ये करते हैं, ये नहीं करते, ये जायज़ है ये नाजायज़ है, तो इंशाल्लाह फिर उससे फ़ायदा होगा. बच्चों से दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन इतनी बेतकल्फी ना हो कि आप अपनी बातें उनसे शेयर करने लग जाएं. ठीक है.